तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
भगवान कहते हैं, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। एक ऐसा योगी है जिसको भगवान कहते हैं वो परम योगी है। हमारे विचार में भगवान कहते हैं वो परम योगी है। एक तो साधारण योगी है, दूसरा परम योगी है। परम योगी कौन है वो हम लोग ने पिछली कक्षा में देखा था, कौन परम योगी है। तो आत्मपौन्य सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, वो परम योगी जो है सर्वत्र एक जैसा सब जगह देखता है, सम देखता है, सब जगह एकत्व तो देखता है। सुख वा यदि दुखम योगी परमो मतः, और सुख और दुख में भी सम रहता है। तो जैसे ही भगवान ने सम वर्ड को यूज, सम शब्द को व्यवहार किया, अर्जुन ने कहा यो एम योगस्तः प्रोक्ता साम्ये न मधुसूदन। ओ मधुसूदन, ओ भगवान, आपने जो ये साम्य योग की बात की, भगवान ध्यान योग की बात कर रहे थे, मेरे जहां परम योगी के बारे में वो सम बुद्धि उसकी रहती है, सम दर्शन रहता है, तो वहां पर आके अर्जुन कहता है आपने जो ये साम्य योग की बात की, अयम योग त्वया प्रोक्त है आपने जो कहा अभी, एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। मेरे को नहीं लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, मेरा मन ऐसा कभी स्थिर नहीं हो सकता है कि सुख और दुख में एक जैसा रहे, ऐसा नहीं होता है। फिर वो एक उपमा देता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़म। ये मन कैसा है, चंचल है, प्रमाथी है, प्रमथनशील है, इंद्रियों को प्रमथन कर देता है, उनको विचलित कर देता है, उनको विक्षिप्त कर देता है, और कैसा है, बलवद है, बहुत बलवान है मन, बहुत बलवान है, और दृढ़म है, किसी के सामने घुटना नहीं टेकता है, इतना दृढ़ है कि इसको बोलो भाई घुटना टेको, बैठो नीचे, ये सुनता नहीं है। तस्य अहम निग्रहम मन्ने वायो रिवसु दुष्करम। मेरे हिसाब से भगवान, ये जैसे वायु को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, निग्रह नहीं कर सकते, उसी तरह हम इस मन को भी निग्रह नहीं कर सकते। मन को निग्रह करना बहुत कठिन है। तो भगवान जो है उसका उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चरम। असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्या कि मन को जो है निग्रह करना, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। दुर्निग्रह क्यों, चलम चलता है, ये चलता है। हमने देखा था अर्जुन ने चंचल शब्द यूज किया, भगवान चलम शब्द यूज कर रहे हैं, और दोनों का हम लोगों ने विचार भी पिछले क्लास में किया था। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो हठ निग्रह से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हट नहीं रहा, जबरदस्ती अभी अभी ऐसे तुम चुप हो जाओ, रुक जाओ, ए नहीं रुकेगा वो, हट निग्रह नहीं हुआ। मगर क्रम निग्रह से, बोले क्रम निग्रह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यासेन तो कौनते है वैराग्य न चगृहते, आपको अभ्यास करना होगा, वैराग्य करना होगा, वैराग्य करना होगा। वैराग्य किससे? भगवान से ना संसार से? संसार से, जगत से वैराग्य करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मन कैसा है? मन अनेक जन्मों से संसार में जगत में रमन करने वाला है, उसको अभ्यास है ऐसा जाने का, उसको जहां छूट मिलेगी वो चला जाएगा जगत के अंदर। अब उसको अगर हमको निग्रह करना है तो हमें क्या करना होगा? उसको बार बार अभ्यास के द्वारा उसको वापस लाना है। जितनी बार वो बाहर जाएगा उतनी बार उसको पकड़ के वापस लाओ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, कहाँ घूमने चले गए? तो ये अभ्यास कितने दिन करना होगा? दीर्घ काल तक करना होगा, बहुत दिन करना पड़ता है, तब जाके निग्रह होता है। फिर भगवान कहते हैं असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप्ति मे मति, मेरी मति है, भगवान कहते हैं ये मेरा विचार है, मेरी समझ है। क्या असंयत आत्मना? असंयत आत्मना मतलब क्या? जिसने अभ्यास और वैराग्य नहीं किया। भगवान जो एक बात कह देते हैं ना उसको पकड़ के रखते हैं। असंयत आत्मा मतलब आपने अभ्यास नहीं किया, आपने वैराग्य भी नहीं किया। दुष्प्राप्ति मति, उसको योग मिलना, उसका मन स्थिर होना दुष्प्राप है, कठिन है, बहुत कठिन है, नहीं होगा, नहीं के बराबर है। वश्य आत्मना तो यतता सत्यो अभाव तुम उपायत, उपायत जो उपाय मैंने बताया, क्या उपाय बताया? अभ्यास और वैराग्य। इस उपाय से अगर आपने अपने मन को वशीकरण कर लिया, वशीकरण कर लिया मतलब आपका मन अब संसार में नहीं जाता है, आपने इतना अभ्यास किया कि अब मन जो है भगवान के चरणों में ही पड़ा रहता है, इतना अभ्यास हुआ, तो यतदा सक्यो अब आप तुम, तो आप जो है योग आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगा। तो अभी ये निष्कर्ष निकला कि जो मन जो है वो चंचल है, नंबर वन, इसको हम निग्रह कर सकते हैं। नंबर टू, इसको निग्रह करने का उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य उपाय है। अगर अभ्यास और वैराग्य आप करोगे तो ये निग्रह हो जाएगा। अगर अभ्यास और वैराग्य नहीं करोगे, ये क्रम निग्रह नहीं करोगे, तो ये मन जो है कभी भी आपके वशीकरण में नहीं आएगा। तो उसका उपाय क्या है? उपाय यही है बस, अभ्यास और वैराग्य। अच्छा, अब शंकराचार्य जी लिखते हैं योगाभ्यास को स्वीकार करके जिसने, अब आपने स्वीकार कर लिया, भगवान की बात मान ली, भगवान की बात मान ली, क्या कि मेरे को वैराग्य लेना है, कहाँ से? जगत से, विषयों से वैराग्य लेना है। ठीक है, हमने समझ लिया भगवान जो कह रहे हैं एकदम ठीक कह रहे हैं। और परलोक की प्राप्ति साधन रूप कर्मों को का त्याग कर दिया, परलोक की प्राप्ति। अब जैसे आपको स्वर्ग लोक में जाना है वो तो परलोक है, वो परलोक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? उसके भी कर्म कांड हैं, आप यहाँ पर पूजा कीजिए आपको मृत्यु के बाद में स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान के मत को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया मतलब उसने काम में कर्म छोड़ दिए, काम में कर्म से क्या होगा? इस दुनिया का भी सुख गया और परलोक प्राप्ति जो स्वर्ग के लिए हम यहां पर कर्म कांड कर सकते थे वो स्वर्ग भी छूट गया। जब हम साधना शुरू करते हैं तो काम में कर्म हमको छोड़ना ही है, निष्काम कर्म में जाना है। अगर काम में कर्म छोड़ देते हैं तो क्या होता है? इस दुनिया का सुख नहीं मिलेगा और न ही हम स्वर्ग की कामना के लिए कर्मकांड कर पाएंगे। तो योगाभ्यास को स्वीकार करके भगवान ने जैसा कहा कि ऐसा योग का अभ्यास करो, हमने स्वीकार कर लिया। करने के बाद इस लोक और परलोक की प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का जो त्याग कर दिया और योग सिद्धि का फल मोक्ष प्राप्ति साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं। हमने साधना शुरू की, साधना शुरू करने का पहला स्टेप है कि आपको काम कर्म छोड़ने हैं, काम कर्म भी आपने छोड़ दिए, और उसका साधना का जो फल है, फल क्या है? उसका फल मुक्ति है। हम जो योग साधना कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, इसका अंतिम फल क्या है? मुक्ति मिल जाएगी हमको, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो हमने साधना शुरू की और मुक्ति जो है प्राप्ति नहीं हुई। कैसी स्थिति है सोचो, भगवान के कहने के अनुसार आपने काम में कर्म छोड़ दिए, साधना शुरू कर दी, काम कर्म छोड़ने का मतलब इस लोक का भी सुख हमने छोड़ दिया और परलोक स्वर्ग प्राप्ति का भी सुख छोड़ दिया। क्यों? कि हम जो साधना कर रहे हैं उस साधना के उपाय से हमको मुक्ति मिल जाएगी ऐसा हमने सोचा था, मगर मुक्ति भी नहीं मिली। ऐसा हो सकता है? क्यों हो सकता है? हम लोग देखेंगे, ऐसा हो सकता है मुक्ति भी नहीं मिली। ऐसे जिस योगी का चित्त अंत काल में योग मार्ग से विचलित हो गया, उस योगी की नाश की आशंका करते हुए अर्जुन पूछे, तो उस ऐसे योगी का क्या होता है? हम लोग के मन में भी ऐसा प्रश्न होता है, हमारी उम्र हो गई है, अगर भगवान की बात मान करके हमने साधना अभी शुरू कर दें, साधना अभी शुरू कर दें मतलब काम कर्म छोड़ दें, स्वर्ग के लिए भी कोई उपाय ना करें, ध्यान योग जैसे जैसे उन्होंने बताया हम बैठ के करना शुरू करें, तो ध्यान योग का जो फल है मुक्ति है, वो मुक्ति नहीं मिली। इसके बीच में ही आइदर शरीर छूट गया अथवा अथवा हम योग भ्रष्ट हो गए, साधना करते करते फिर विषयों में चले गए। मोक्ष प्राप्ति नहीं होने के केवल दो ही कारण है, तीसरा कारण आपको नहीं मिलेगा। पहला कारण है कि आप जो है फिर से विषयों में चले गए, विषयों ने फिर आपको टान लिया, वैराग्य आपका कम था, वैराग्य कम होने के कारण विषयों ने आपको फिर से अट्रैक्ट कर लिया, साधना छूट गई। और दूसरा, वैराग्य पूरा था आपका मगर क्या हुआ, शरीर छूट गया, प्रारब्ध खत्म हो गया, साधना हमने शुरू की अब शरीर छूट गया। तो ऐसे साधक का क्या होता है, ये है प्रश्न उसका। तो प्रश्न अर्जुन करते हैं, अयति श्रद्धेयोपेतो योगाचरित मानस है अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होती है, कौन है ये आदमी? बोले अयति, उसने प्रयत्न पूरा नहीं किया। प्रयत्न पूरा नहीं किया मतलब वैराग्य के लिए जितना प्रयत्न करना चाहिए था उतना प्रयत्न नहीं किया, अयति प्रयत्न पूरा नहीं हुआ, मगर श्रद्धा उपे, तो श्रद्धा थी पूरी उसमें, इस मार्ग के अंदर पूरी श्रद्धा थी कि भगवान ने अगर कहा है तो इसका फल हमको निश्चित मिलेगा, ऐसी श्रद्धा उसकी पूरी थी। मगर योग चलित मानस है, मगर उस योग से उसका मन भटक गया, भ्रष्ट हो गया, योग से चलित मानस चला गया। अच्छा, अप्राप्य योग संसिद्धि, अब वहां से चला गया विषयों की तरफ, अब उसको संसिद्धि कैसे मिलेगी, सफलता कैसे मिलेगी? सफलता तो मिल नहीं सकती, सफलता मिल नहीं सकती। तो अर्जुन का प्रश्न है, काम गति कृष्ण गच्छति, ये भगवान आप ये बताएं कि उसकी गति क्या होती है। देखो, इस साधक की जो है परिस्थिति एकदम भिन्न है, उसने यहां भी सुख भोगने का जो था वो भी नहीं उसको मिला, और मुक्ति जिसको कहते हैं हम लोग परम आनंद की प्राप्ति है वो भी नहीं मिली। सो अल्प आनंद भी नहीं मिला, परम आनंद भी नहीं मिला, परम आनंद भी नहीं मिला। तो ऐसे साधक का क्या होता है? देखो, जिसने साधना नहीं शुरू की हो तो अच्छा है, ठीक है भाई, हम तो विषयों में रमन कर रहे हैं, हमको सुख मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप मिशन में आए, हम लोग ने आपको बताना शुरू किया भगवान ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं, आपने कहा नहीं ये तो साइंस जो है ये पक्का साइंस है, पक्का साइंस है, इसको तो करना चाहिए, मुक्ति लेनी चाहिए, आपको समझ भी आ गया साइंस, आपने साधना शुरू कर दी, साधना शुरू कर दी, काम में कर्म खत्म हो गए, हमको इस लोक का सुख नहीं चाहिए। क्यों नहीं सुख चाहिए? कि इस लोक में तो दुख ही दुख मिलता है, जो सुख मिलते हैं वो सारे के सारे जो है टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। और कभी भी वो हमको जो है उसका पूर्णता नहीं मिलती है, कृतकृत्यता नहीं होती है कि फुलफिल्ड और नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हम कहते कभी भी। जितना आ जाए उतना अच्छा है, जितना धन मिल जाए उतना अच्छा है, कभी हम बस नहीं कहते हैं कि और नहीं चाहिए हमें, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, ऐसा चलता रहता है। उसके बाद वो कहता है कच्चित उभय विभ्रष्ट, कच्चित उभय विभ्रष्ट, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ उभय विभ्रष्ट हो गया, इस लोक का भी सुख नहीं मिला उधर का परमानंद मिला, उभय विभ्रष्ट हो गया ये आदमी। अच्छा छिन्नाभ्रमिव, छिन्नाभ्रमिव नश्यति, जैसे एक बादल जो है एक क्लाउड का मास है, उसमें से एक थोड़ा सा छोटा सा क्लाउड भटक गया है, जो भटक गया अब वो गंतव्य स्थल तक भी नहीं पहुंच पाता है और न ही जो है उसको सुख मिला, अब वो छिन्न भिन्न हो गया। तो कहता है कैसे, क्या इस तरह से वो साधक क्या छिन्न भिन्न हो जाता है, न इधर का न उधर का, न गदा घर का न घाट का, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, क्या होगा उसका। अप्रतिष्ठो महाबावो विमूढ़ो ब्रह्मणपति, अप्रतिष्ठ मतलब क्या वो निराश्रय हो गया, उसका कोई आश्रय नहीं है, अप्रतिष्ठित। महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति, महाबाहो हे कृष्ण, जो ब्रह्म मार्ग से मोहित हुआ, ब्रह्म मार्ग से मोहित हो गया, ब्रह्म मार्ग साधना कर रहा था, मोहित हो गया, अलग हो गया, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, इसके बारे में अब जो है 39वें श्लोक में प्रश्न को और साफ करता है।
एतन्मे संशयं कृष्ण,
एतन्मे संशयं कृष्ण,
चेत्तुमर्हस्य शेषतः,
चेत्तुमर्हस्य शेषतः,
त्वदन्य संशयस्यास्य,
त्वदन्य संशयस्यास्य,
चेत्तानायुपपद्यते,
चेत्तानायुपपद्यते,
एतन्मे संशयं कृष्ण, चेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्य संशयस्यास्य, चेत्तानायुपपद्यते।
एतद्मे संशयं कृष्ण, हे भगवान कृष्ण इसमें मेरा संशय है, थोड़ा सा डाउट है, इतन में संशय, छेदतुम अरहसी अशेषता, इसका आप छेदन करने के योग्य हैं, आप इसको छेदन कर सकते हैं, इस डाउट को जो है हमारा खत्म कर सकते हैं। त्वद अन्य संशयस्य छेता नहीं उपपद्यते, त्वद अन्य आपके सिवा दूसरा, देखो आपके सिवा दो, देखो ये अर्जुन का बुद्धि कितनी शार्प है, वो भगवान के वो कहता है कि आपको छोड़कर इस प्रश्न का उत्तर या मेरा जो डाउट है, मेरा जो संशय है, इसको कोई हटाने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, असचेता नहीं उपपद्यते, कोई मिलना संभव ही नहीं है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा ऐसा है भगवान, ठीक है। हे कृष्ण एतत् में संशय, ये मेरा संशय है, ज्ञान इसके बारे में साफ नहीं है, आपने कर्म के बारे में सकाम कर्म के बारे में बताया कि ये बांधता है, ये मेरे को समझ में आ गया, और ध्यान योग से मेरे को जो है वो मुक्ति प्राप्त होगी, ये भी मेरे को साफ साफ समझ में आ गया, मगर जो साधक ने जर्नी स्टार्ट की, यात्रा शुरू की और वो पहुंच नहीं पाया, इसके बारे में उसका क्या होता है, ये ज्ञान आपने नहीं दिया भगवान, आपने नहीं बताया ऐसे साधक का क्या होता है। छेदतु महर्षि अशेषता है, मेरा संशय पूरा छेदन कर दें। देखो कई बार हम लोग कहते हैं ना कि ज्ञान संशय रहित होना चाहिए, बार बार हम लोग कहते हैं, अर्जुन भी वही चीज चाहता है कि मेरा जो है ज्ञान संशय रहित हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने साधना शुरू की और पहुंचा नहीं तो मेरा क्या होगा बताओ। देखो हम एयरलाइन में जाते हैं ना, तब आपको अगर लेके जाना है दिल्ली, या वो यूरोप से ही अगर किसी कारण से वापस फ्लाइट वापस आ जाए शिकागो, शिकागो से स्टार्ट किया आपको 8 घंटा ले गए, 8 घंटा वापस लेके आ गए, तो फिर क्या होता है, हमको मालूम है पैसा वापस मिलेगा नहीं तो फिर से लेके जाएंगे, ये तो हमको पता होता है ना, मगर जो साधना हमने शुरू की और हमको प्राप्ति नहीं हुई तो उसका क्या होगा, भगवान ने अभी तक बताया नहीं था क्या होगा उसका। तो मेरे संशय को खत्म करें, त्वदन्य संशयस्य अस्य चेतान ही उपपद्यते, दूसरा कोई संशय का निवारण नहीं कर सकता। क्यों? देखो, जन्म और मरण जो है ईश्वर के नियमन के अंडर है, उसके नियमन में है, उसके नियंत्रण में है जन्म मरण। तो ईश्वर जानता है उसका क्या होता है, इज इट नॉट सो? अगर ईश्वर हर जीव का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानते हैं, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल का ज्ञान अगर भगवान को पूरा है, तो भगवान को पता है इसका क्या होगा इसके बाद? दूसरा कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, केवल भगवान बता सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि इसका मेरे संशय का छेदन करने का कोई दूसरा आदमी अवेलेबल नहीं है, कोई गुरु नहीं बता पाएगा, केवल आप बता पाएंगे क्योंकि आप ईश्वर हैं और ईश्वर के नियंत्रण में जो है जन्म मृत्यु है। तो ये आदमी जो मरा, ये साधक जो मरा, उसका क्या होता है कौन बताएगा? ईश्वर बताएगा। इसलिए आपको बताना है। अच्छा, योग भ्रष्ट का क्या होगा उसका आप बताइए कि ये व्यक्ति कहाँ जाके प्रकट होगा। और दूसरा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है और गुरु मानने के बाद में अब आपका ये कर्तव्य होता है कि मेरे डाउट के, मेरे संशय का छेदन आप करें। देखो, अर्जुन जो है ना, प्रश्न करने से हिचकिचाता नहीं है। जब भी उसको थोड़ा सा संशय होता है वो प्रश्न कर देता है, प्रश्न कर देता है। अच्छा, भगवान कहते हैं, अच्छा भाई बताते हैं आपको क्या करना है आपको।
श्री भगवान उवाच,
श्री भगवान उवाच,
पार्थ नैवेह नामुत्र,
पार्थ नैवेह नामुत्र,
विनाशस्तस्य विद्यते,
विनाशस्तस्य विद्यते,
नहि कल्याणकृत् कश्चित्,
नहि कल्याणकृत् कश्चित्,
दुर्गतिं तात गच्छति,
दुर्गतिं तात गच्छति।
श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र, विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत् कश्चित्, दुर्गतिं तात गच्छति।
भगवान उसका उत्तर देते हैं, पार्थ न एव इह न अमूत्र विनाश तस्य विद्यते। इह यहाँ पर, जब तक वो जीवित है यहाँ पर, और मृत्यु के बाद अमूत्र, अमूत्र मतलब जिस लोक में भी हो जाएगा उसका कोई विनाश नहीं होता। देखो, पहली लाइन में भगवान ने कह दिया कि तुमको चिंता नहीं करनी है, जिसने साधना शुरू की उसका ना तो यहाँ कोई, यहाँ किसी का किसी का नाश नहीं होता और न ही कोई दुर्गति उसको बाद में जाके मिलती है। नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। नहीं कल्याणकृत मतलब भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन हमने किए, जो कर्म किए, उससे किसी किस्म की दुर्गति नहीं होती, कोई किस्म की दुर्गति नहीं होगी। देखो, भगवान ने बहुत साफ साफ कह दिया। इस श्लोक में भगवान ने जो है अर्जुन को दो नाम से पुकारा है, एक तो एक कहा है पार्थ, दूसरा कहा है तात। तात मतलब शिष्य, तुम मेरे शिष्य हो। जब भी भगवान नाम लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर तो दो बार नाम ले लिया, एक बार भी अगर ले ले भगवान नाम तो जानो कि ये जो है श्लोक महत्वपूर्ण है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, प्रश्न करता जो है उसका अपना प्रश्न नहीं होता है, दूसरों का प्रश्न लेके वो प्रश्न कर देता है, दूसरों का प्रश्न से कर देता है। तो भगवान पार्थ कहकर ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन तुम तो मेरे साथ हो, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे सखा हो और मेरे प्रिय हो। ऐसा आगे कह चुके हैं भगवान, तुम मेरे सखा हो, तुम प्रिय हो। और दूसरा, तुम कुंती पुत्र हो। तीसरा, तुम्हारे साथ मेरा संबंध है, संबंध है, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे रहते कैसे होगा तुम्हारे साथ ऐसा। तो अर्जुन जो धर्मवान है, जो शास्त्र के अनुसार काम कर रहा है, शास्त्र के अनुसार, मतलब गीता के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, वेद के अनुसार जो काम कर रहा है, और जो सर्वतः विरक्त है, वैराग्य, आपको याद रखना होगा, अभ्यासे न वैराग्य न, साधक ने विरक्ति आ गई है थोड़ी सी, विरक्ति आ गई है, विरक्त है, और जिसने श्रवण मनन निधि ध्यासन शुरू किया, याद रहे किस किस्म का साधक है ये, काम कर्म उसने छोड़ दिया, सर्वकर्म संन्यास लिया उसने, सर्वकर्म संन्यास का मतलब क्या होता है, श्रवण मनन निधि ध्यासन कर रहा है, श्रवण मनन निधि ध्यासन कर रहा है, तो ऐसा साधक इस लोक में भी सम्मान पाएगा और उसकी लोग यहां निंदा नहीं करेंगे, इसका मतलब इस लोक में भी उसका विनाश नहीं है, जो अच्छा आदमी उसकी लोग निंदा थोड़ी ना करते हैं, जो शास्त्र विहित कर्म कर रहा है उसकी लोग निंदा नहीं करते कभी, तो यहां भी विनाश नहीं है। एवं मृत्यु के पश्चात जब अमूत्र लोक में जाएगा, अमूत्र लोक मतलब दूसरे लोक में जाएगा, वहां भी कहते हैं कि वो लोअर लोक में नहीं जाएगा, देखो मजे की बात है, वो लोअर लोक में नहीं जाएगा, मनुष्य लोक से ऊपर की लोक की तरफ हो जाएगा, कौन से लोक में ऊपर की लोक की तरफ जाएगा, तो कहते हैं कि उसका जैसा प्रारब्ध के कारण शरीर छूटा है, या उसके अंदर आलस्य या वैराग्य कम था, या भोग के कारण पूरा जो है वो पुरुषार्थ नहीं कर पाया, तो उसका भी दूसरे लोक में दुर्गति नहीं है, दुर्गति नहीं है। ऐसा क्यों, इसका हेतु क्या है, क्या कारण है, क्यों दुर्गति नहीं होगी उसकी, आपको याद रखना होगा कि साधना क्यों छूटी उसकी, साधना इसलिए छूटी उसकी कि एक तो उसका आलस्य हो गया होगा साधना में, दूसरा उसको भोग की चिंता सताई होगी कि फिर से जाएं भोग करें, जैसे हम मेडिटेशन में ध्यान में बैठते हैं सवेरे तो कॉपी 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 आ जाता है ना, विषय विषय चिंतन, विषय की तरफ फिर चले गए, उठ गए ध्यान से, उठ गए विषय में चले गए, और तीसरा हो सकता है कि प्रारब्ध खत्म हो गया, ये तीन छोड़ के दूसरी चौथी उसका कोई और रीजन नहीं है, कारण नहीं है, प्रारब्ध मतलब शरीर छूटने का समय आ गया, शरीर छूट गया, तो भगवान कहते हैं नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कल्याणकृत मतलब शुभ प्राप्ति करने वाले कर्म, शुभ प्राप्ति करने वाले कर्म क्या, भगवत प्राप्ति वाले कर्म, आप तो भगवान को पहुंचने के लिए जो साधना कर रहे थे, जो पूजा पाठ कर रहे थे, जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उनके बारे में श्रवण कर रहे थे, मनन कर रहे थे, सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि में लगे हुए थे, ये सारे के सारे कल्याणकृत कर्म हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जा रहे थे उसके अंदर आपको सफलता नहीं मिली, आपने कर्म किए मगर कर्म करने के बाद जो सफलता मिलनी चाहिए, जो वहां आपको पहुंचना चाहिए, वहां आप पहुंच नहीं पाए, मुक्ति नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ, साधक का प्रयास था, प्रयास कर रहा था, मगर प्रयत्न में थोड़ी कमी थी, थोड़ी कमी थी उसकी, तो भगवान आश्वासन देते हैं कि अध्यात्म में चलने वाले साधक कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, नंबर वन, इसको एकदम लिख के रख लीजिए अपने वहां पर घर में दीवार में, उसको लगा दीजिए कि जिस आदमी ने व्यक्ति ने अपनी साधना शुरू की उसकी कभी दुर्गति न इस लोक में जीवित काल में होती है और न ही मृत्यु के उपरांत होती है, मृत्यु के उपरांत भी नहीं होती। अच्छा, ऐसा साधक जो है दो प्रकार का हो सकता है, ऐसा साधक दो प्रकार का हो सकता है, क्योंकि भगवान दो प्रकार के साधकों के बारे में आगे उत्तर देने वाले हैं। पहला साधक कौन है, जिसका वैराग्य कम था, भोग वासना के कारण मार्ग में सफलता नहीं मिली, अभ्यासेन तो वैराग्येन, उपाय भगवान ने बताया था कि मन को निग्रह करने का उपाय क्या है, आपको अभ्यास करना है और वैराग्य करना है। तो एक ऐसा साधक है उसने साधना शुरू की मगर वैराग्य पूरा नहीं हुआ, वैराग्य पूरा नहीं हुआ मतलब जितना वैराग्य आपको संसार से चाहिए था उतना वैराग्य आपने नहीं किया, नहीं किया मतलब क्या हुआ, आपका मन फिर से डोलकर फिर संसार में चला गया, फिर संसार में चला गया। तो एक तो ये साधक है, और दूसरा साधक है जिसके अंदर वैराग्य पूरा था, वैराग्य पूरा था मगर उसको समय नहीं मिला, उसका शरीर छूट गया। तो दो ही केस इसमें बनते हैं, एक में वैराग्य कम था, योग भ्रष्ट हो गया, फिर से विषयों में चला गया, दूसरा वैराग्य पूरा था मगर उसको समय नहीं मिला, शरीर छूट गया। तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। अब दोनों स्थिति में, अब आप भगवान कहने जा रहे हैं, देखिए दोनों स्थिति में उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों स्थिति में वैराग्य अगर कम था या वैराग्य पूरा था, शरीर छूट गया, योग भ्रष्ट हो गया, इन बोथ केसेस उसको जो है मनुष्य का शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा। अगर ये निश्चित है तो अब आप ये सोचिए हमें साधना शुरू करनी चाहिए या नहीं। उसका एक ही उत्तर होगा, जरूर करनी चाहिए। हम अगर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, हमें चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। नंबर वन, हमको मनुष्य शरीर, इसके बाद वाला जो शरीर होगा वो मनुष्य शरीर मिलेगा, बहुत बड़ी बात है ये, भगवान कहने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो भगवान जो भी कह रहे हैं, जो वचन उन्होंने कहे, जो सुझाव दिया है, उसके हिसाब से हमें अपनी साधना शुरू कर देनी चाहिए, बिना चिंता के। ये नहीं सोचना चाहिए उम्र हो गई, अब पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्या होगा मेरा, मैं यहाँ पर आराम से भोग विलास कर रहा हूँ, ये भी छूट जाएगा, रोज सूर्योदय के पहले उठेंगे, ऐसे तो हम 10 बजे उठते हैं, सूर्योदय के उसमें उठना होगा, ठीक है। मगर एक चीज और आपको बता दें, ज्ञान जो है केवल दो लोक में मिल सकता है, ये भी लिख कर आप रख दो, ज्ञान आपको केवल दो लोक में मिलेगा, या तो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी देंगे या मर्त्य लोक में यहां मिलेगा, ज्ञान और बीच में किसी लोक में नहीं मिलेगा, भू के बाद में, शरीर इस लोक के बाद में, भुआ सुआ महा जना तप सत्यम, सत्यम मतलब ब्रह्मलोक, या तो ब्रह्मलोक में ज्ञान मिलेगा और या आपको यहां। अच्छा, ब्रह्मलोक में पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, भाई हमको जो है लॉन्ग जर्नी लेनी है, लॉन्ग जर्नी लेनी है मतलब हमको थोड़ा ब्रह्मलोक भी घूमना है, उसके लिए आपको बहुत कर्म और उपासना करनी होगी, तब आप ब्रह्मलोक पहुंचोगे। अच्छा, वहां ब्रह्मलोक में जब पहुंचोगे ना, तो वहां पर आनंद बहुत है, आपको हमने आगे भी बताया होगा कि यहां से आनंद ज्यादा स्वर्ग में है, स्वर्ग से ज्यादा आनंद मह में है, मह से जन में है, जन से ज्यादा तप में है, और तप से ज्यादा ब्रह्मलोक में है। तो वहाँ ब्रह्मलोक में फिर आप उसमें आनंद में आप रमन करना शुरू कर दिए, और ब्रह्मा जी देखेंगे कि ये तो वैराग्य के इसका तो पूरा हुआ नहीं है, तो खाली अभी सुखी सुख भोग रहा है, वैराग्य तो वहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए, दोनों जगह वैराग्य चाहिए, वैराग्य चाहिए, वैराग्य होगा तभी तो आपको ज्ञान देंगे, तो वहाँ भी आपका टेस्ट होगा, वैराग्य होगा कि नहीं। देखो नचिकेता का भी टेस्ट हुआ था वैराग्य कि नहीं, यमराज ने जब उसको आत्मज्ञान देने के बारे में पहले उसका टेस्ट लिया था, परीक्षा ली थी कि तुम ये अप्सरा ले जाओ, धन ले लो, लाइफ ले लो, वेल्थ ले लो, नृत्य गीत संगीत सब ले जाओ, सब सेलिशियल दिव्य यंत्र हैं सब, उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, सब नहीं चाहिए हमें। तो परीक्षा देखो स्वर्ग लोक में भी वहां भी होती है। अच्छा, अब 41वें श्लोक में हम देखेंगे, ये गति बताएंगे, साधक जिसमें वैराग्य कम था, भोग वासना के कारण यत्न कर रहा, मतलब यत्न में पूरा नहीं हुआ, भोग वासना के कारण जो है योग भ्रष्ट हो गया। हमने दो ही आपको बताए थे, एक में वैराग्य कम है और विषयों की तरफ में फिर से मुड़ गया, साधना शुरू की थी करके फिर विषयों में चला गया, ये केस नंबर वन। दूसरा केस नंबर टू, वैराग्य पूरा है मगर समय नहीं मिला, शरीर छूट गया। तो इन दो केसों की क्या क्या गति होती है वो भगवान बता रहे हैं। तो पहले के अंदर जिसमें साधक में वैराग्य कम था, भोग वासना के कारण योग भ्रष्ट हो गया, उसके लिए उसका उत्तर भगवान देते हैं 41वें श्लोक में।
प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उषित्वा शाश्वती समाह, उषित्वा शाश्वती समाह, शुचीनाम श्रीमताम गेहे, शुचीनाम श्रीमताम गेहे, योग भ्रष्टो भी जायते, योग भ्रष्टो भी जायते, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उषित्वा शाश्वती समाह, शुचीनाम श्रीमताम गेहे, योग भ्रष्टो भी जायते।
भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वतीम समाह। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, प्राप्य प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, पुण्य कृताम लोकान, ऐसे लोक में जाता है जहां पर लोग पुण्य करके वहां पहुंचते हैं। हम लोग जो भी पुण्य करते हैं ना, अगर हम लोग का पुण्य बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम जो है ऊपर के लोक में जाते हैं, और जब पाप ज्यादा होता है तो हम नीचे के लोक में आ जाते हैं। जब पाप पुण्य बराबर होता है तब हम इस लोक में आते हैं, मनुष्य लोक में, मर्त्य लोक में आते हैं। तो जिसका पुण्य ज्यादा होगा, जिसने बहुत पुण्य किए, जिस लोक में वो जाता है उस लोक में ये योग भ्रष्ट, कौन सा योग भ्रष्ट, जिसने साधना शुरू की थी मगर फिर विषयों की तरफ चला गया, ऐसा व्यक्ति उषित्वा शाश्वतीम समा, वहां उषित्वा निवास करता है। शाश्वतीम समा, शाश्वत बहुत, समा वर्षों तक, बहुत वर्षों तक फिर वो उस ऊपर वाले लोक में वहां रहता है। अच्छा, फिर क्या होता है, सूची नाम श्रीमदाम के, हे योग भ्रष्टो अभिजायते, सूची नाम शुद्ध आचरण करने वाले, श्रीमताम श्रीमान पुरुष, गेहे घर में, योग भ्रष्ट अभी जायते, ऐसा योग भ्रष्ट फिर जन्म लेता है। देखो ये मनुष्य जन्म हो गया ना, पहले केस के अंदर जिसका वैराग्य कम था, योग भ्रष्ट हो गया था, उसको भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं देखो तुम भोग में चले गए थे ना, चलो तुमको ऊंचे वाले लोक में ले जाते हैं। क्यों ऊंचे वाले लोक में जाता है, क्योंकि उसने भगवत प्राप्ति की साधना की है, इसलिए उसको ऊंचा लोक मिलेगा। वहाँ ऊंचा लोक में, ऊंचे लोक में कितने दिन रहेगा, बहुत समय तक। क्यों बहुत समय तक रहेगा, क्योंकि उसकी भोग वासना के कारण वो योग में भ्रष्ट हो गया था, इसलिए भगवान कहते हैं भोग लो और ले लो सुख, यहां पर सुख ले लो तुम जितना लेना है। लेने के बाद में सूची नाम श्रीताम के, हे योग भ्रष्टो अभी जाए थे, फिर उसको भेज देते हैं। साधना कंप्लीट नहीं हुई है, जब तक आपकी साधना पूरी नहीं होगी, आपको साधना पूरी करने के लिए भगवान फिर जन्म देंगे, उसको फिर भेज देते हैं। कहाँ भेजेंगे, तो बोलते हैं कि ऐसी जगह भेजेंगे जहां पर उसको पैसे की तकलीफ नहीं हो, श्रीमताम गे, पैसे वाले के यहाँ। और सूची नाम, सूची नाम मतलब जो धर्म परायण है, धार्मिक लोग हैं। देखो कई जगह बहुत लोग जो हैं धनवान होते हैं मगर धार्मिक नहीं होते, और जो धार्मिक होते हैं बहुत से वो जो हैं वो गरीब होते हैं, वो उतने जो है संपन्न नहीं होते। तो ऐसा परिवार जो बहुत धनी है एवं धार्मिक है, ऐसे परिवार में इस योग भ्रष्ट का जन्म होता है। अच्छा, ऐसा परिवार क्यों दिया उसको? क्योंकि योग भ्रष्ट था ना, विषयों के सुख उसको चाहिए थे, तो सुख की प्राप्ति के लिए पहले बहुत सालों तक उसको वहां रखा ऊपर वाले लोक में, फिर उसको जन्म दिया, मनुष्य जन्म हुआ। किस परिवार में जन्म हुआ? सुची नाम, धार्मिक परिवार है। श्रीमताम, श्रीमता मतलब वहां पर उसको पैसे की कमी नहीं है, धनी परिवार है, ताकि उसकी जो बची खुची वासना है वो भी खत्म हो जाए, वो वासना भी खत्म हो जाए। ऐसे लोग कौन हैं? जैसे जनक हैं, गौतम बुद्ध हैं। देखो, गौतम बुद्ध राजा परिवार से थे, उनका जन्म वहां हुआ, मगर वो लोग धार्मिक थे। उसके बाद में उनकी साधना वहां से आगे बढ़ी। ऐसा होता है। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं।
अथवा योगिनामेव, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम,
कुले भवति धीमताम
एतद्धि दुर्लभतरम,
एतद्धि दुर्लभतरम
लोके जन्म यदीदृशम, लोके जन्म यदीदृशम अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम।
अब ये देखो सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी वाला क्या था? उसमें वैराग्य पूरा था मगर उसको समय नहीं मिला। पहला कैटेगरी क्या था? उसमें वैराग्य कम था मगर विषयों की तरफ में फिर चला गया, वैराग्य कम था विषयों में चला गया। तो वैराग्य कम वाले को कहाँ भेजा भगवान ने? बोले ऊंचे लोक में उसको भेज दिया। क्यों ऊंचा लोक उसको मिला? क्योंकि उसने जो साधना भगवत प्राप्ति की थी उसके कारण उसको ऊंचा लोक मिला। वहाँ पर काफ़ी दिन तक वो रहेगा और रहने के बाद में फिर श्रीमताम गेहे, श्रीमताम गेहे सुची नाम, जो जो है धर्मशील जो परिवार है, धर्म के अनुसार जो चलते हैं और जो धनी परिवार हैं, ऐसी जगह में उसको वापस जन्म मिलता है। मगर दूसरा जिसमें विरक्ति बहुत थी, वैराग्य पूरा था मगर उसको समय नहीं मिला, शरीर छूट गया, उसको क्या मिला? बोलो उसको भी फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा, उसको भी मनुष्य जीवन। कैसा? अथवा, अथवा मतलब जो वैराग्यवान है, योगी नाम एव कुले भवती धीमता, योगी नाम मतलब योगियों का, कुले मतलब परिवार में, भवती जन्म लेता है कौन? धीमताम, ज्ञानवान। एतत् दुर्लभतम रोके जन्म यते ईदृशम, मगर ऐसा जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। योगी कुल में जन्म मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, योगी कुल कौन सा हुआ? कि जहां पर स्पिरिचुअल साधना प्रचलित है, जहां पर स्पिरिचुअल साधना प्रचलित है वे लोग भोग में रुचि नहीं लेते। ऐसे लोग, ऐसे परिवार वाले लोग भोग के अंदर रुचि नहीं लेते। उन्होंने अपना क्या है, उनको अपना जो है कुछ भी अपने पास नहीं रखते हैं, वो मटेरियल जो कुछ भी था उनका उन्होंने सब दे दिया, सब विशेष कुछ अपने पास नहीं रखते हैं। इसलिए योगी कुल के परिवार में बराबर गरीबी देखी जाती है, ये गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं। मगर धीमता माने ये ज्ञानवान है, माता पिता धार्मिक हैं, ज्ञानवान हैं, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना हमें चाहिए नहीं चाहिए, इस संसार से इतना ही लेते हैं जितना उनको चाहिए, उतना ही लेंगे जितना उनको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसी जगह अगर हमको संतान के हिसाब से अगर जगह मिल जाए तो साधना तुरंत शुरू हो जाती है, क्योंकि माँ बाप एकदम धार्मिक हैं, साधना शुरू वहीं से शुरू हो जाती है तुरंत। अच्छा, तो ऐसे कुल में उनका जन्म क्यों होता है? ऐसे कुल में उनका जन्म इसलिए होता है कि ये साधक जो है विरक्त था, इसके अंदर भोग वासना नहीं है, भोग वासना नहीं है। क्योंकि भोग वासना नहीं है इसलिए उसको निर्धन परिवार होने से भी कोई चिंता नहीं है। और पहले वाले साधक में क्या हुआ, भोग वासना के कारण भ्रष्ट हुआ, इसलिए भगवान उसने धनी परिवार देते हैं प्लस धार्मिक परिवार देते हैं। यहां पर कैसा दिया, योगी कुल दिया। ये कौन सा व्यक्ति है जो पूरा विरक्त था, पूरा विरक्त था, मगर उसको समय साधना का नहीं मिला। ईदृशम जन्म लोके दुर्लभतरम, ऐसा कुल पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखो ऐसे जो होते हैं ना परिवार, वो संतान भी नहीं चाहते, संतान भी नहीं चाहते लोग। संतान होगी तो फिर जो है उसको ये करो, पालन पोषण करो, बड़ा करो, ऐसा करो ऐसा करो, वो भी नहीं चाहते। बहुत मुश्किल है ऐसा उसको मिलना। देखो ये ऐसा व्यक्ति जो है दूसरे लोग ऊंचे लोक में नहीं गया, ऊंचे लोक में नहीं गया, वो सीधा यहां से वो छूटा, एक शरीर छोड़ा, प्रारब्ध के कारण छूट गया, तुरंत उसको योगी कुल के अंदर चला गया। पहले वाले केस में क्या था, वैराग्य कम था इसलिए उसको ऊपर वाले लोक में भेज दिया, चलो तुमको भोग वासना चाहिए, चलो भोग कर लो, और फिर उसको सूची नाम श्रीमताम गेह भेज दिया, वहां पर तुम अपनी साधना शुरू करो। दूसरा जो विरक्त था उसको भी जो है मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला कि आप आगे फिर शुरू करो। देखो हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल आप मिलता है, जैसे ठाकुर रामकृष्ण, ठाकुर रामकृष्ण का जन्म अगर आप जाओ वहाँ उनके घर के देखो, एक जगह का नाम है क्या है, कुमार कुंडू जगह का नाम है,
कामार पुकुर
उसको लोग कहते हैं। गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण में उसको मिलेगा आपको जगह का नाम कमार पुकुर में क्या है, उनकी झोपड़ी जो देखो ना, वो मतलब जो है कच्ची है एकदम, जैसे ग्राम के अंदर होती है ना मिट्टी का लेप किया हुआ, बांस के ऊपर मिट्टी का लेप, और क्या साइज होगा, हार्डली इनसाइड जो है 7 फुट बाई 7 फुट की, 8 फुट बाई 8 फुट की, 6 फुट बाई 6 फुट, ये इतना ही छोटा छोटा है, 2 या 3 है वहाँ कुटियाँ उनकी बस। और ऐसा कहा जाता है कि उनके माता पिता को वहाँ के जमींदार ने कहा था कि तुम एक झूठी गवाही दे दो बस, तुमको 10,000 रुपये देंगे। देखो आज से 150 साल पहले 10,000 रुपया बहुत होता था, बहुत होता था, मगर उसके माँ बाप ने राजी नहीं हुए, बोले नहीं हम नहीं लेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा। तो उसको धमकी वगैरह दी थी कि तुमको हम अपने यहाँ से निकाल देंगे, राज्य से बाहर जाओ मगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो। मगर ये देखो योगी कुल ऐसा था, वो सब पैसे वैसे वाले चक्कर में नहीं गए कि 10,000 दे दो पक्का मकान बन जाएगा, बहुत पैसे बच जाएंगे, नहीं कुछ नहीं किया उन्होंने। और उस कुल के अंदर रामकृष्ण का जन्म हुआ देखो, और बिना शिक्षा के कुछ भी, वो देखो उनकी साधना कैसे शुरू हुई, फटाफट वो बढ़ गए। संत ज्ञानेश्वर के पिता भी संसार से भागकर काशी गए थे, संत ज्ञानेश्वर एक बड़े महात्मा हुए हैं, उनके पिता संसार विवाहित थे, पत्नी थी, मगर चले गए संसार छोड़ के, और गुरु के पास वहाँ गए, गुरु ने संन्यास दे दिया। संन्यास देने के बाद में फिर उसको जो है उसकी पत्नी जो है पहुँच गई वहाँ, ये तो विवाहित आदमी है, ये कैसे छोड़ के यहाँ आपने उसको संन्यास दे दिया, आप तो संन्यास नहीं दे सकते। देखो विवाहित को संन्यास नहीं मिलता है, संन्यास नहीं मिलता है मतलब उनको जो है वो ब्रह्मचारी के या वो सन्यासी के कपड़े नहीं देते हैं, नहीं देते। तो जब गुरु को आदेश मिला, ये पता लगा कि यहाँ भाई ऐसा ये संत ज्ञानेश्वर के पिता जो हैं वो शादीशुदा हैं और उन्होंने आके यहाँ पर सन्यास ले लिया, उन्होंने कहा वापस जाओ गृहस्थ आश्रम में। देखो सन्यास से लोग वापस गृहस्थ आश्रम में नहीं आते हैं, एक बार संन्यास लेने के बाद में फिर गृहस्थ आश्रम में लोग नहीं आते हैं, मगर ये गुरु का आदेश, अब गुरु का आदेश तो मानना होगा, तो संत ज्ञानेश्वर के पिता जो है फिर उसको संन्यास को छोड़ के गृहस्थ आश्रम में आए। गृहस्थ आश्रम आने के बाद में उनके चार संतान हुई और एक से एक बढ़ के जैम चारों। उनके नाम थे निवृत्तिनाथ, सोपान, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सबके सब बड़े महात्मा, सबके सब बड़े महात्मा हुए। तो उनके थ्रू ऐसे महात्मा आने वाले थे, इसलिए संत ज्ञानेश्वर के पिता को फिर से वापस गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ा। वो अगर नहीं जाते तो ये चार संत नहीं मिलते, चार संत नहीं मिलते हमें। तो हम अच्छी तरह से समझ लें कि हमें साधना जरूर शुरू करनी चाहिए। यही एक जगह है जहां पर भगवान ने बहुत साफ कह दिया है कि जो साधना शुरू करता है उसका दूसरा जन्म मनुष्य जन्म ही होता है। अब साधना करते करते हम योग भ्रष्ट हो सकते हैं। योग भ्रष्ट के केवल दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो है कि जीवन है मगर अपनी साधना करते 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 हमने फिर से विषयों में चले गए, ये एक केस है। दूसरा जो है केस कौन सा है, दूसरा केस है जिसमें वैराग्य पूरा है मगर उसको समय नहीं मिला का साधना करने का, पूरा पूरा वैराग्य है, पूरा विरक्त है मगर समय नहीं मिला उसको। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म, ऐसे साधक का जन्म योगी कुल में होता है सीधा डायरेक्ट। और जिसमें वैराग्य कम था, विषयों में फिर से चला गया, जिसकी भोग वासना थी, उसके लिए भगवान ने क्या रास्ता ठीक किया है कि उसको ऊंचे लोक में पहले ले जाएंगे। ऊंचे लोक में जाके आपकी भोग वासना और थोड़ा से खत्म कर लो, भोग कर लो, करते 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 अपने आप ही अनुभव होगा कि भोग से जो है कभी भी तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं आएगी। फिर उसको बोलेंगे जाओ तुम जाओ, वापस जाओ मनुष्य लोक में जाओ। मनुष्य लोक में जाके फिर उसको एक धनी घर और धार्मिक परिवार में डाल देते हैं ताकि तुमको भोग के लिए कोई तकलीफ ना हो, भोग तुमको मिल जाए, वहाँ भी मिल जाए जो बाकी थोड़े बहुत रह गए, और वहाँ से साधना तुम शुरू करो। अगर ये हमको ठीक से समझ में आ गया है तो सर्वकर्म संन्यासी जिसने श्रवण मनन निधि ध्यासन की तरफ अपना जीवन मोड़ दिया है उसको अवश्य साधना करनी चाहिए, अवश्य मेव साधना करनी चाहिए। भगवान यहाँ ये गारंटी कर देते हैं कि आपका अगला जीवन मनुष्य जीवन होगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको इमीडिएटली फिर से साधना करने का अवसर मिल जाएगा ताकि आप नेक्स्ट जन्म के अंदर मुक्ति पा जाएं, नेक्स्ट जन्म में ही मुक्ति पा जाएं। अगर ये विज्ञान, ये साइंस आपको अगर समझ में आ गया है तो हम लोग सबका धर्म एक ही बनता है कि हमें साधना पूरे जोर तोर से शुरू कर देनी चाहिए। काम में कर्म नहीं करना है हमको, हमको निवृत्ति मार्ग लेना है। निवृत्ति मार्ग मतलब श्रवण मनन निधि ध्यासन हमको चलना है, आगे करना है। और इसके बाद, इसके बीच में हमारा अगर शरीर छूट जाए क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम सब लोगों के लिए तो चिंता नहीं है, भोग की क्या चिंता है, भोग तो कर लिया, बहुत कर लिया, अब क्या बाकी रह गया, भोग कौन सा भोग आपका बाकी रह गया जो और अभी करना है आपको, और तो कोई भोग नहीं है, सारे भोग आपने भोग लिए हैं। अगर अब भी साधना नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब साधना नहीं होगी तो वासना के अनुसार आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए साधना हमको अब तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। इसमें अब कोई संशय है आपको, संशय रहित होना चाहिए एकदम। हमने दोनों की परिस्थिति आपको साफ साफ बता दी है कि वैराग्य कम होगा, आप फिर अगर विषयों की तरफ चले गए तब भी आपको लाभ है, वैराग्य पूरा है मगर जीवन आपका शरीर छूट गया तब भी लाभ है, दोनों स्थिति में लाभ ही लाभ है। और दूसरा तीसरी चीज ये है कि आपको जो है मनुष्य जीवन मिल गया और मुक्ति आपकी, उसके बाद वहां से साधना वहां से शुरू, ये अगले श्लोक में बताने वाले हैं क्या होता है उसकी साधना, फिर कहां से शुरू होती है। फिर ऐसा नहीं होता है कि फिर से आप शुरू करेंगे कि चलो भाई तत्वबोध फिर से पढ़ो, साधना पंचकम पढ़ो, ऐसा नहीं होगा। और वो साधना नहीं होगी, हम आपको साइंटिफिकली बता देंगे, आपको दिखा देंगे कि वो साधना और नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा विज्ञान की, इसके बाद हमको आगे बढ़ना है और वो फिर हम आगे वहाँ सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा दूसरे जीवन के अंदर कि भाई हमने साधना की है, कुछ नहीं करना होगा। तो वो क्या है वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे और उस दिन हम छठवां अध्याय खत्म कर देंगे। 47 श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं, उसको हम अगली कक्षा में देख लेंगे।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।